Namo Buddhaṁ, Namo Sikkhaṁ, Namo Āryaṁ, Namo Vajjaṁ, Namo Duryaṁ, Sikāra Sikṣavasāṁ. Mangalam Bhagavānyam, Mangalam Vajjaṁ, Mangalam Mangalam, Mangalam Mangalam, Mangalam. Sarva Mangalyam, Mangalyam, Sarva Kalyāna Kārakam, Pradhānam Sarva Dhammānam, Jainam Jaitu Sāsāṁ. ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ज्ञान की सामदम मोक्षदम सेव ओंकार नमो नमः समस्तारा विश्वानु भूतिया प्रकाश से शिष्ट भाव भाव सर्व भाव कर से अब नाम के राम नाम नाम नाना धुन सला से सत्सुरुम निकम में नम सत्म श्री गुरुदेव आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानसंयो करोति पर भावस्य कर्ता तुमा मोहयं व्यवहार मंगल में मंगल करम गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते हुए विहिता ओम नमो तुझे जी नमो तुझे जी नमो तुझे जी हमारे परमात्मा के शासन में कुंकुनाचार्य भगवान की हमने पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल सानिध्य में पूज्य बाबा जी की स्मृति में आयोजित शिविर में ज्ञान के प्रभाव यानी समय ज्ञान यानी सतर्कता के स्वभाव के ऊपर में अपनी चर्चा कर रहे हैं बाबू जी के लेख के माध्यम से जहाँ पे ज्ञान का विशेष भाव और सामान्य भाव ज्ञाकार भाव ज्ञानकार भाव विशेष भाव और उस ज्ञाकार या ज्ञानकार प्रणाली में ज्ञानत्व का अन्वय उसका सामान्य भाव है ये बात अपनी चली। अब आगे बाबू जी कहते हैं कि दर्पण में वस्तुओं के अनेक आकार प्रकार बनते बदलते रहते हैं किंतु दर्पण प्रत्येक परिवर्तन में अक्षुण रहता है। दर्पण में वस्तुओं के अनेक आकार प्रकार बनते बदलते रहते हैं किंतु दर्पण प्रत्येक परिवर्तन में सुन रहता है। वस्तुओं के अनेक आकार प्रकार के संघटन एवं विघटन में दर्पण का एक रूप का अप्रभावित होती है साथ ही उन आकारों प्रकारों में दर्पण की स्वच्छता को आंख में नहीं आती है। जैसे दर्पण में अग्नि प्रतिबिंबित होती है किंतु दर्पण में अग्नि के प्रतिबिंब से न तो दर्पण चूटता ही है पर न गर्म भी होता है क्योंकि दर्पण में जो अग्नि दिखाई देती है वह साक्षात अग्नि नहीं है वरन वह तो दर्पण की अपनी अग्नि है वह दर्पण की अपनी पर्याय है। अतः वस्तुतः वह दर्पण ही है। एक दर्पण के दृष्टांत में पूरा पिक्चर दिया सबका रोजाना अनुभव है कि अनेक आकार प्रकार बनते बिगड़ते रहते हैं। दर्पण के अंदर में अनेक वस्तुओं के अनेक आकार प्रकार बनना और बिगड़ना लेकिन वो हर परिस्थिति के अंदर में दर्पण अक्षुण रहता है अखंड रहता है एक रूप रहता है। उस आकार प्रकार के संगठन एवं विघटन में दर्पण की एक रूपता अप्रभावित रहती है। ज्ञान के अंदर में ज्ञाता कितने ही हो अनेक हो लेकिन इस अनेक दुनिया का के आकार प्रकार से और उसके संगठन एवं विघटन में ज्ञान की एक रूपता अप्रभावित रहती है। अनेक को जानते हुए ज्ञान अनेक रूप नहीं होता, ज्ञान एक रूप है। इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं कि अनेक पदार्थ ज्ञान के अंदर में जानने में आ रहे, तो ज्ञान के अंदर में अनेक आकार होने के बावजूद भी पहले ज्ञान अनेक रूप नहीं होता और वो अनेक आकार प्रतिबिंबित होने पर भी प्रतिभाषित होने पर भी ज्ञान एक रूप रहता है, अनेक रूप नहीं होता। वो ज्ञान का ही आकार है जिसने अनेक रूप धारण किया। बराबर है, ज्ञान ज्ञान को ही प्रकाशित करता है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान प्रक्रिया का ही ज्ञान होता है। क्योंकि जैसे श्रद्धा के विषय में श्रद्धे में अपने द्रव्य के निश्चय की चर्चा करते हैं, यहाँ ज्ञान के अंदर में भी पर्याय का निश्चय की चर्चा करे तो ज्ञान पर्याय में ज्ञान का ही ज्ञान होता है। ये ज्ञान पर्याय का निश्चय है, न पर्ययों का ज्ञान होता है न ही वास्तविक से आप देखा जा रहे हैं। तो त्रिकाली का ज्ञान होता है, बात थोड़ी गंभीर की है लेकिन समझ में योग्य है। कैसे त्रिकाली अक्षुण रहता है, त्रिकाली ज्ञान के अंदर में अनुभव में आने पर भी ज्ञान पर यह ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ती, ज्ञायत में प्रवेश नहीं करती, न ज्ञायत ज्ञान में प्रवेश करता। लेकिन अभी उस विषय तक अपन पहुंचे नहीं है, अभी तो विषय यह है कि अनेक ज्ञान का ज्ञान के अंदर में प्रकाशित होते हुए भी, अनेक आकारों का संगठन और विघटन होते हुए भी ज्ञान एक रूप रहता है। उसको अनेक आकार प्रकारों से ज्ञान की जो स्वच्छता है उसको आज भी नहीं है। जैसे दर्पण में अग्नि प्रतिबिंबित होती है किंतु दर्पण में अग्नि के प्रतिबिंब से न तो दर्पण टूटता ही और न ग्रहण होता है। जो भी पदार्थ है ज्ञान के अंदर में बर्फ दिखाई दे, ज्ञान के अंदर में शरीर दिखाई दे, ज्ञान के अंदर में घट दिखाई दे, जो कुछ भी दिखाई दे उस रूप ज्ञान ही होता है। ऐसा आकार ज्ञान में होते हुए भी ज्ञान उस पदार्थों से अप्रभावित रहता है, जैसे दर्पण अप्रभावित रहता है अनेक पदार्थों के प्रकाशित होने पर भी, उसी तरह से ज्ञान भी अनेक पदार्थों का प्रकाशित होता हुआ अप्रभावित रहता है। न उससे उसको कोई अंतर पड़ता है, न उसमें कोई खंड पड़ता, न वो अनेक रूप होता है, न टूटता है, न बिगड़ता है, न मिट्टी का घड़ा उसमें आता है। ज्ञान के अंदर में बना हुआ घड़ा तो ज्ञान का ही होता है, मिट्टी का घड़ा ज्ञान में नहीं होता। कहने में तो आता है कि मिट्टी के घड़े को जाना, लेकिन सही में तो ज्ञान का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा आता ही नहीं होता और ज्ञान ने उस मिट्टी के घर से कुछ लिया ही नहीं होता, न उस मिट्टी के घर की ज्ञान को अपेक्षा ही है। निर्दयिक ज्ञान अखंड रूप से एक रूप रहता हुआ परिणमित होता है। वह साक्षात अग्नि नहीं बर वह तो दर्पण की अपनी अग्नि है। वो देव जो भी ज्ञान के अंदर में प्रकाशित हुए प्रतिबिंबित हुए वो सही में तो ज्ञान का अपना परिणाम है, वह दर्पण की अपनी पर्याय है, वो ज्ञान की अपनी पर्याय है। अतः वस्तु का वह दर्पण ही है, अतः वस्तु का वह ज्ञान ही है। अब इस बात को बाबूजी आगे स्पष्ट करते हैं। दर्पण में प्रतिबिंबित अग्नि की रचना के नियामक उपादान दर्पण के अपने स्वतंत्र है। दर्पण के दृष्टांत के बाबूजी उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। अपनी अग्नि की रचना में दर्पण ने बाह्य अग्नि से कुछ भी सहयोग नहीं लिया है। अपनी अग्नि की रचना किसकी रचना, अग्नि की किसकी रचनी, अपनी अग्नि बाहर में दिखाई देने वाली अग्नि नहीं है। अपनी अग्नि की रचना में दर्पण में बाह्य अग्नि से कुछ भी सही हो, कुछ भी सही हो, कुछ भी सही हो नहीं लिया है। यह अग्नि दर्पण की अपनी स्वतंत्र शक्ति एवं संपत्ति है। यह अग्नि दर्पण की अपनी स्वतंत्र, सबसे पहले तो स्वतंत्र, फिर अपनी शक्ति, अपनी स्वतंत्र, अपनी शक्ति एवं अपनी संपत्ति है। उसमें अग्नि का कुछ भी नहीं है। वह अग्नि दर्पण की अपनी स्वतंत्र शक्ति एवं संपत्ति है। दर्पण की अग्नि का आकार बाह्य अग्नि सूर्य होते हुए भी, बाह्य में जैसी अग्नि है उसके बराबर होते हुए भी, उसके तुल्य होते हुए भी बाह्य अग्नि इसमें रंच मात्र भी कारण नहीं है। रंच मात्र भी, लेस मात्र भी, किंचित मात्र भी कारण नहीं। कर्ता कर्म व्यवस्था तो है ही नहीं, लेकिन कारण कार्य संबंध ही नहीं है। दर्पण के अंदर में जो अग्नि दिखाई देती है उसकी दर्पण की अपनी संपत्ति, अपनी सृष्टि स्वतंत्र पड़े प्रकट हुई है। उसमें बाहर में दिखाई देने वाली अग्नि से कुछ भी नहीं है, रंज मात्र भी नहीं है, तथा बाह्य अग्नि जल रही है, इसलिए दर्पण में अग्नि प्रतिबिंबित हो रही है। यह भी नितांत असत्य है, नितांत असत्य है। समझे भाई, भगवान की दृष्टांत को दर्पण का दृष्टांत समझने में भी कुछ ना दिखेगा, क्योंकि बात एक्सेप्टिंग होती है। लेकिन बाबू जी सारे प्रकार के तथ्य इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि सही में निकाल कर सकती है। क्या निकाल कर सकती है? दर्पण में अग्नि प्रतिबिंबित हो रही है, बाह्य अग्नि जल रही, इसलिए दर्पण में अग्नि प्रतिबिंबित हो रही है, तो निकाल कर सकते हैं। यदि ऐसा स्वीकार कर लिया जाए तो वस्तुओं को प्रतिबिंबित करना दर्पण का स्वभाव नहीं रह जाएगा। यदि अग्नि के कारण यहाँ पे कुछ हुआ, यदि ऐसा ले लिया है, तो फिर दर्पण की स्वच्छता, दर्पण का स्वभाव अनेक पदार्थों को अपने में प्रतिबिंबित करने का, उनकी व्यवस्था, उनकी स्वच्छता, दर्पण का स्वभाव नहीं है। यदि उस अग्नि के कारण दर्पण में कुछ होता है, कि उसका कारण अग्नि है तो दीवार में हो जाए। कारण यदि अग्नि है तो किसी का भी कारण बन सकते, जैसे दर्पण का कारण बनती है तो दीवार का कारण बन जाए, लोहा का कारण बन जाए, लोहे की चट्टान का कारण बन जाए। यदि उस अग्नि में से कुछ आया है तो नहीं आया है, यदि ये बात आपको स्वीकृत है, मैं कोई आपत्ति नहीं, हम आगे चलो। दर्पण का स्वभाव अग्नि सापेक्ष होकर स्वभाव समझना को खोले, दर्पण का स्वभाव अग्नि सापेक्ष होकर क्या होगा? सबसे पहला जो किया है, यदि आपने उसको अग्नि सापेक्ष को मान लिया कि दर्पण जो है वो अग्नि सापेक्ष है, अग्नि है उसके दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है, तो दर्पण अपने स्वभाव को खो देगा, स्वभाव समझना को खो देगा, तो उनका स्वभाव नहीं कह रहा है। वस्तुतः दर्पण के स्वभाव में यदि अग्नि आकार परिणमन की शक्ति और योग्यता न हो तो सारा विश्व मिलकर भी उसे अग्नि आकार नहीं कर सकता। दर्पण के स्पर्श स्वभाव में यदि अग्नि आकार परिणमन की शक्ति एवं योग्यता, शक्ति एवं योग्यता न हो तो सारा विश्व मिलकर भी उसे अग्नि आकार नहीं कर सकता। और यदि स्वयं दर्पण में अग्नि आकार होने की शक्ति एवं योग्यता है तो फिर अग्नि की क्या अपेक्षा है? यदि उसका स्वयं शक्ति है, उसकी स्वयं की योग्यता है, तो उसमें अन्य की क्या अपेक्षा, अन्य की क्या अपेक्षा है? वो अकेला भी जिसको मिलकर किसको दर्पण नहीं बना सकता है दीवार को। जो शक्ति शून्य है उसे शक्ति नहीं दी जा सकती, और जो शक्तिमय है उसे अपनी शक्ति के प्रयोग में किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होगी। जो शक्ति शून्य है उसे शक्ति नहीं दी जा सकती, और जो शक्तिमय है उसे अपनी शक्ति के प्रयोग में किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होगी। जगत की कोई भी वस्तु पर सापेक्ष रहकर अपना अस्तित्व नहीं रख सकती। यदि ये पूरी की पूरी बात यदि ज्ञान के अंदर में दिखा दी जाए, दिखो तो दिखो तो बैठ जाएगी। जैसे दर्पण के अंदर में अग्नि की कोई सापेक्षता नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, दर्पण स्वतंत्रता से अपनी योग्यता से अपनी शक्ति से अग्नि आकर पर नहीं है, उसमें अग्नि से क्रिया नहीं, अग्नि की अपेक्षा नहीं है। उसी तरह से ज्ञान के अंदर में लोकालोक प्रकाशित होता है, तो इस ज्ञान में लोक से कुछ लिया नहीं है, न उसे लोक की अपेक्षा है, न वो लोक के कारण ज्ञान के अंदर में प्रतिबिंबित हुआ। यदि ऐसा होता तो ज्ञान की स्वच्छता और ज्ञान का स्वभाव समाप्त हो जाए। जगत के पदार्थों के आकार यदि ज्ञान में प्रकाशित होता है तो हो जाए घर के अंदर में, शरीर के अंदर में उसका प्रकाशन। ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान का स्वभाव है कि ज्ञान शक्ति से भरा पड़ा है, शक्तिमय है, तो उसको दूसरे की अपेक्षा नहीं, और अपनी शक्ति के प्रयोग में किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। ज्ञान को देवों की अपेक्षा नहीं होती। जगत की कोई भी वस्तु पर सापेक्ष रहकर अपना अस्तित्व नहीं रख सकती। यदि दर्पण में प्रतिबिंबित अग्नि का कारण बाह्य अग्नि है तो पाताल में भी अग्नि प्रतिबिंबित होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। अतः अपनी अग्नि की रचना की संपूर्ण सामग्री दर्पण के अपने अपने कोष में ही पड़ी है, उसे किसी से कुछ उधार नहीं लेना पड़ता। यदि ज्ञान में प्रतिबिंबित जगत के पदार्थों का कारण जगत के पदार्थ है तो जड़ में भी ये पदार्थ प्रतिबिंबित होने चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। अतः अपने ज्ञेयाकारों की रचना की संपूर्ण सामग्री ज्ञान के अपने कई कोष में ही पड़ी है। सिर्फ आप अग्नि की जगह ज्ञान को लगाते हैं, उस ज्ञान में किसी से कुछ उधार नहीं लेना पड़ता। इनका स्वभाव है, स्वच्छता उसका स्वभाव है, जगत उसका सारा का सारा प्रतिबिंबित हो, और उसकी सारी सामग्री उसके अक्षय कोष में पड़ी है। ज्ञान शरीर से बना हुआ ज्ञान, उसको पदार्थ से क्या लेना और क्या देना। इस चर्चा में ऐसा तक भी प्रस्तुत किया जाता है कि यदि बाह्य अग्नि दर्पण अग्नि का कारण नहीं है, और दर्पण में उस समय अग्नि आकार पर्यावरण की स्वतंत्र योग्यता है, तो फिर जब अग्नि न हो तब भी दर्पण का अग्नि आकार परिणाम होना चाहिए, अथवा अग्नि की समस्या में भी दर्पण में अग्नि प्रतिभाषित न होकर कुछ अन्य प्रतिभाषण होना चाहिए। विचित्र तथ्य है। दो बात करिए, कि बाह्य अग्नि दर्पण अग्नि का कारण नहीं ऐसा आप यदि कहते हो तो दर्पण में उस समय अग्नि आकर परिणाम की स्वतंत्र योग्यता है, तो फिर जब अग्नि न हो तभी अग्नि दिखनी चाहिए एक बात, पर अग्नि की समस्ता में भी दर्पण की अग्नि प्रतिभाषित न होकर और कुछ प्रतिभाषित होना चाहिए क्योंकि वो उसका वैभव है ना दर्पण का। तो ऐसा है सामने तर्क प्रस्तुत किया गया तो उसको उत्तर बाबू देते हैं तो विचित्र तर्क है यहाँ जो दर्पण के स्वभाव की स्वतंत्रता पर एक जाप रहा है वो अग्नि दिखाई करेगी कि उसका समय रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, वो कब दर्पण के अंदर में अग्नि प्रतिभाषित हो कब दर्पण अग्नि आकार पर परिणाम है इसका निर्णय अग्नि करेगी। विचित्र तर्क है ना बिल्कुल, यदि दर्पण के समक्ष अग्नि हो और वह व्यक्ति की व्यक्ति दर्पण में प्रतिबिंबित न हो तो फिर हम दर्पण की वस्तु को कहेंगे। वस्तु जैसी हो वैसी ही प्रतिबिंबित करे उसे ही तो दर्पण कहते हैं, जैसी वस्तु है वैसी ज्ञान के अंदर में प्रतिभाषित हो उसी को तो हम ज्ञान कहेंगे, किसको कहेंगे ज्ञान, यही पदार्थ जैसे वैसे के वैसे ज्ञान के अंदर में प्रतिभाषित न हो हम ज्ञान किसको कहेंगे। पुनः यदि अग्नि के अभाव में भी दर्पण में अग्नि प्रतिबिंबित हो, यदि पुनः अग्नि के अभाव में भी दर्पण में अग्नि प्रतिबिंबित हो अथवा अग्नि की समस्ता में दर्पण में अग्नि के स्थान पर घट प्रतिबिंबित हो तो दर्पण की प्रमाणिकता क्या करें, है सामने अग्नि और प्रतिभाषित हो घट तो उसको दर्पण की प्रमाणिकता कहेंगे। अब जैसे पदार्थ है वैसे ही तो प्रतिबिंबित होने चाहिए, यदि वो नहीं हो तो उसकी दर्पण अपन कैसे कहेंगे, और उसके बदले और कुछ हो तो उसकी प्रमाणिकता क्या रहेगी। अतः अग्नि का भी होना और दर्पण में भी सांगोपांग वही प्रतिबिंबित होना यही वस्तु स्थिति है, पर यही वस्तु का स्वभावगत अनादि निधन नियम भी है, इसमें पारस्परिक कारण कार्य भाव से उत्पन्न किसी स्वतंत्रता अथवा सापेक्षता के लिए रंज भी अवकाश नहीं है। इस प्रकार दर्पण और उसका अग्नि आकार अग्नि से सर्व का पथक तथा निर्देश ही रह जाता है। शायद दर्पण का दृष्टांत एकदम स्पष्ट है तो ज्ञान के विषय में बाबू जी कह रहे थे दर्पण के समान ज्ञान भी ज्ञेय से अत्यंत निरपेक्ष रहकर अपनी ज्ञा का यानी कि ज्ञानाकार का उत्पाद व्यय करता है, जैसे दर्पण करता है ऐसे ही ज्ञान करता है, जैसे अत्यंत ज्ञेय से अत्यंत निरपेक्ष रहता है उसकी अपेक्षा बिना उनके सहयोग बिना उनसे अप्रभावित रहकर अपने में अपनी शक्ति से अपनी योग्यता से अपने समय से जैसे पदार्थ है वैसे के वैसे ही ज्ञान के अंदर में प्रतिबिंबित होते हैं प्रतिभाषित होते हैं, और वो अग्नि और प्रतिभाषित हो घट तो ज्ञान की प्रमाणिकता ही क्या कहलाई। ज्ञान में ये या ज्ञा का ज्ञान में ये या ज्ञा का कि इस अभाव को ज्ञान का असत स्वभाव कहते हैं। ज्ञान में ये या ज्ञा का कि इस अभाव को ज्ञान का असत स्वभाव कहते हैं और अनेक ज्ञेयों के आकार परिणमित होकर भी प्रत्येक ज्ञा का ज्ञानाकार में ज्ञानत्व की धारावाहिकता कभी भंग नहीं होती, अनेक ज्ञेयों के आकार परिणमित होकर भी प्रत्येक ज्ञा का या ज्ञानाकार में ज्ञानत्व की धारावाहिकता कभी भंग नहीं होती। जनक प्रति जो धारावाहिकता वो अक्षुण रहती है, कभी भंग नहीं होती। क्या इस वक्त कभी वक्त रहा ज्ञान तो कभी नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। वो अन्वय बने सामान्य ज्ञान सामान्य बने सदा ही मौजूद रहता है, उसमें कभी भंग नहीं पड़ता। अर्थात ज्ञान के प्रत्येक ज्ञाकार यानी कि ज्ञानाकार में ज्ञान सामान्य का अन्वय अखंड तथा अपरिवर्तित है। अभी देखिए ये भेद ज्ञान की धारा है। आज ये जो सबका जो प्रश्न है कि वो भेद ज्ञान को नहीं होगा। भेद ज्ञान की धारा पे आवे तो भेद ज्ञान हो, मन की धारा पर ही चलता रहे, विचारों के हार माना चलता रहे तो ज्ञान की धारा पर ही नहीं आवे, पर्याय भेद में ही रमता रहे। ज्ञानत्व जो उसका अखंड बने प्रवाहित तो होता है, ऐसे अपने अस्तित्व को ग्रहण ही नहीं करे, वे तो कोई ग्रहण ही करवा दे सकता। कोई विधिविधान ऐसा नहीं है कि जो मुझे आपको बता दे कि आपको ज्ञान के अंदर में ज्ञान का अस्तित्व को कैसे ग्रहण करना, ये तो आपको ही प्रयोग से उनका ग्रहण करना होगा। अस्तित्व उसका अस्तित्व समझ में आता है, ज्ञान का अस्तित्व सबको समझ में आता है, पकड़ में आता है, वो पकड़ में ज्ञान के अंदर में ज्ञान के अस्तित्व को प्रयोग से स्वयं पकड़ सकता है। और ये तब होता है जब उनका अभिप्राय स्पष्ट हो, अभिप्राय के अंदर में कोई गलती ना हो, अभिप्राय के अंदर में गलत मान्यता ना हो, अभिप्राय के अंदर में कोई विपरीतता ना हो, ज्ञान का यथार्थ निर्णय हो। और ज्ञान का यथार्थ निर्णय हो, क्या श्रद्धा का पक्का निर्णय हो और अनुभूति ना हो, इन लोक में ऐसा कभी बनता नहीं। इस विषय से हम निश्चिंत हो जाए, पर्याय की व्यवस्था जानकर, पर्याय का स्वभाव जानकर, पर्याय की योग्यता जानकर, पर्याय की क्रमबद्धता जानकर, पर्याय का सत्ता बनाया कि छू गया, परावर्तन का स्वभाव में आ गया और ज्ञान सामान्य का अन्वय अपरिवर्तित है, ये बात ही समझ में आ गई। देखिए गड़बड़ कहां होती है, गड़बड़ अपन सही बात को भी सुनते हैं और पुरानी जो व्यवहार वाली बात, कोई अपेक्षित बात, किसी और बात को सिद्ध करने की बात भी जिनवाई में कही गई ज्ञानियों से सुनी गई, तो इस बात का मिश्रण करते हैं। जब आपका चुनाव जब चेंज हो जाता है तो सब्जेक्ट हिस्ट्री का हिस्ट्री रहता है, लेकिन उसका क्लास अपर चले जाता है। रोज तीसरे क्लास की हिस्ट्री यदि आप पीएचडी में भी पढ़ना चाहो या वहां का चला हुआ इंग्लिश उसी को यदि आप पीएचडी के अंदर में चालू रखना चाहो तो इसके अंदर में कंफ्यूजन के अलावा, अच्छे शब्दों के अंदर में गुंजवन के अलावा और कुछ नहीं है। आपके पास में वस्तु व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए, वस्तु का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ज्ञान की व्यवस्था का इनकार नहीं होना चाहिए, अनुकांक्षिक व्यवस्था और उसमें से समय एकांत में आना चाहिए। तो समय एकांत यदि मैं हूँ ऐसा पक्का निर्णय करके हनुमान ज्ञान से आगे बढ़ते हुए सही मतलब अनुभव देने का जन्म होता है। इसके लिए किसी ने आज तक प्रयत्न नहीं किया। और जब सुगानी साहब को पूछा गया कि अनुभव कैसे होता है तो ज्यादा पहुंचते अनुभव हमारी एक्सीडेंट होता है, प्रयत्न से नहीं होता। तो क्या कहते थोड़ा समझे इनको इस बात को, सहज माने स्वाभाविक माने आप कर्ता बुद्धि का भाव कायम रखो, हमें अनुभव करना है और आपको अनुभूति हो जाए ऐसा होने। सहज साध्य का मतलब यह है कि सहज प्रकार की स्वभाव के ऊपर में उसका भजन आवे और अनुभूति ना हो ऐसा भी हो नहीं सकता, क्योंकि ये त्रिकाल अबाधिक सत्य है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि आज तक ऐसी एक भी घटना घटी नहीं कि जिसने यथार्थ निर्णय करके पक्का निर्णय किया हो और पक्का निर्णय कर मैं नहीं हूँ ऐसा स्वभाव के अंदर में दब गया हो और उसका आनंद का वजन नहीं आया।
ऐसा होता ही नहीं है। तो अपन को इस बात को ख्याल रखना है कि वस्तु व्यवस्था प्रयोजन को विषय पर फोकस करना, इंफॉर्मेशन जो कुछ भी लिए उसको ध्यान में रखना, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फोकस विषय के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करना है, डेडिकेटेड करना है। इस जन्म के अंदर में हमें सुधात्मा के अलावा कुछ नहीं समझना, भगवान आत्मा के अलावा हमें किसी से कोई प्रयोजन नहीं। वो किसी न किसी बहाने से व्यवहार को होता है, पर वो व्यवहार को उसका है क्योंकि निश्चय नहीं है। जिसके पास में व्यवहार निश्चय नहीं होता उसके पास में व्यवहार नहीं होता, व्यवहार भाव होता है। और ज्ञानी का व्यवहार को अपना यदि व्यवहार समझ ले तो भूल वेदना नहीं रहता, पादक के व्यवहार को अपना व्यवहार समझ ले तो उसका तो इंद्रिय ज्ञान भी सम्यक है। ज्ञानी का इंद्रिय ज्ञान भी सम्यक है क्योंकि उसको पता है उसकी व्यवस्था क्या है। तो इंद्रिय ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान जानते हैं, इंद्रिय ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान नहीं जानते। तो अपन सावधानी बरते, जागृत रहे, मूलभूत विषय से दाएं बाएं नहीं हो, घोड़े की तरह दावड़े, घोड़े के दावड़े लगा कर एकदम सीधा लेते हैं। हे सुदामा भगवान आत्मा के अलावा कहीं तो क्या नहीं। देखिए जब निकलने का मार्ग सामने आ चुका है, समुद्र का किनारा पार लग गया, किनारे पर पहुंच जाए, किनारा लग चुका है, बात आप समझो अच्छी तरीके से। आपको एक फलंग मार के बाहर आ जाना है, बस एक फलंग मारना है। जहाँ पे आए वहाँ पे एक फलंग मार के अंदर जाना है, कुछ बाकी नहीं रहा है। और कैसे पता चलता है? ज्ञान में प्रत्येक ज्ञाकार में ज्ञान ही प्रतिध्वनित होता है। ज्ञान के प्रत्येक ज्ञाकार में देखिए इस बात को गौर किया जाए, ज्ञान के प्रत्येक ज्ञाकार में ज्ञान ही प्रतिध्वनित होता है। जो शक्ति कथा में कहा ज्ञाकार हुआ की सेवाओं में न्याय पर प्रतिष्ठित है, हुआ ज्ञाकार और प्रसिद्धि उसकी क्यों ज्ञान की प्रसिद्धि नहीं। ज्ञान का भवा की से भाव है, मैंने जो भाव किया कर वो उस भाव को ज्ञापन प्रसिद्ध है। प्रभु हमको तो यही जानने में आता है स्वप्न में, भैया ऐसा होता नहीं है ज्ञान का अंदर में कि तुम्हारी भ्रांति है कि तू पर को जानता है। इस भ्रांति का नाम इसका ज्ञान है। जबकि हुआ जाए ज्ञान के प्रत्येक दिया कारण, प्रत्येक दिया कारण एक एक दिया कारण ज्ञान ही निश्चय से ज्ञान ही प्रतिध्वनित होता है। प्रत्येक दिया कारण ज्ञान ही प्रतिध्वनित होता है। तो ये जो प्रशुद्धता क्यों नहीं है? देखिए सच्ची गाथा में तो गुरुदेव श्री प्राण कहते थे ध्यान शासन का, एक ही गाथा के अंदर में ध्येय पूर्वक ध्येय का स्वरूप क्या, ज्ञान का स्वरूप क्या, ध्येय पूर्वक ध्येय आत्मा की अनुभूति किस तरह से होती है, फिर पूरी की पूरी बात सच्ची गाथा में। उसमें गुरुदेव के ये वचन है कि सच्ची गाथा में समीकार की शुरुआत और सच्ची गाथा में समीकार की पूर्ण है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। से भाव में ज्ञापन प्रतिष्ठित है। प्रभु आप क्या कहते हो? बारह ब्याज आके करते हो, पूरा अग्नि लकड़ी आता हुआ तो हम तो ये समझते हैं कि अग्नि ने लकड़ी को जला। ज्ञान के अंदर में ये प्रतिभाषित हुए तो हम तो ये समझते हैं कि ज्ञान के जीव को जान। अब ये भ्रांति है बिल्कुल। यहाँ तक कि सचमुच देखा जाए तो अग्नि लकड़ी के आकार की नहीं है, अग्नि अग्नि के आकार में होता है। तो संयोग में क्या है? उसका ज्ञान कराने के लिए लकड़ी आकार का है, अग्नि अग्नि के आकार में, लकड़ी लकड़ी के आकार में, अग्नि के कारण लकड़ी नहीं जलेगी। अरे लकड़ी द्रव्य के कारण लकड़ी की पल्लिया नहीं जलेगी। अपन सोचे वस्तु व्यवस्था को कितनी कॉन्क्रीट व्यवस्था हमारे सामने, जहाँ पर हिंदू भक्त को कोई गुंजाइश नहीं है, यदि आप फोकस हो, मैं बार बार एक बार बोलता हूँ कि फोकस होना चाहिए। हमें बात को समझना होगा कि जरूरत का क्या है। यदि अग्नि लकड़ी को नहीं जलाते, लेकिन लकड़ी की पर्याय के अंदर में जो अभी झरना हो रहा है उसका कारण लकड़ी द्रव्य है क्या? क्योंकि पर्याय के अंदर में झरने रूप योग्यता है तो जल भी है। फिर तो योग्यता की बात आई, उसका कारण लकड़ी भी नहीं है, उसका कारण अग्नि भी नहीं है। तो अग्नि ने लकड़ी को जलाया, ज्ञान ने जीवों को जलाया, दोनों ही बात गलत है। क्या दिया अग्नि ने उस लकड़ी से? क्या दिया अग्नि ने उस लकड़ी को? क्या दिया ज्ञान ने जीवों से? और जीवों ने ज्ञान को क्या दिया? जब कुछ नहीं दिया, कुछ हुआ ही तो हुआ क्या? ज्ञान के अंदर में ज्ञान बढ़ता है ना, वही बात करते ज्ञान के ऊपर क्या दिया था हमने, ज्ञान ही प्रतिध्वनित होता है, ज्ञान ही प्रचलित था। कभी कभी प्रत्येक दिया था ज्ञान के प्रत्येक दिया था, मैंने प्रत्येक बोले, इसमें ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है। ज्ञान के प्रत्येक दिया था, तो प्रत्येक वहां क्या होता, सत्य दिया था। मैं ज्ञान ही प्रतिध्वनित होता है। हाँ, ये व्यवस्था ही है भाई। न्याय का बहुत ही न्यायिक प्रकृति से जानना कौन प्रकृति है, क्योंकि न्याय का उसलिए अग्नि ने लकड़ी को नहीं जलाया, उसलिए अज्ञान ने देव को नहीं जाना। अभी तो हम उस कल्याण को समझे, द्रव्य की बात तो बात कर रहे हैं, उसकी पर्याय की व्यवस्था परिणाम में वाली पर्याय दिया का परिणाम के अंदर में ज्ञान ही हमें और कुछ होता ही नहीं। उस परिणाम के अंदर में ज्ञान का परिणाम के अंदर में ज्ञान ही जानने में आता है। चलेंगे आपसे आप दूर तरफ चले, जहाँ के बाद गियाकार की बात करते हैं तो गियाकार की व्यवस्था को समझे पहले अपन, कि गियाकार में क्या होता है। क्योंकि ज्ञान प्रतिध्वनि होता है, ज्ञान ही प्रतिध्वनि होता है। कौन से गियाकार होता है? प्रत्येक गियाकार में कुछ बाकी नहीं रहता। अज्ञान नित्या ज्ञान या समझ ज्ञान की चर्चा नहीं है। देखिए व्यवस्था तो जो है तो है, अभी अपन माने तो व्यवस्था यह है, न माने तो व्यवस्था यह है। इसे आदम ने ज्ञान का सब स्वभाव कहा है। अपने में अनंत लोकालोक रूप चित्र विचित्र दिया कर नियत समय में उत्पादन करने में ज्ञान अत्यंत स्वतंत्र है। इसमें उसे लोकालोक की कोई अपेक्षा नहीं है, न उसे लोक से कुछ लेना पड़ता है और न कुछ देना पड़ता है। ज्ञान में जो लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान के उस ध्येय जैसे आकार की रचना, ज्ञान के उस ध्येय जैसे आकार की रचना ज्ञान की उपादान सामग्री से होती है। ज्ञान में जो लोग प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान के उस ध्येय जैसी आकार की रचना, जैसा ध्येय है वैसा आकार की रचना ज्ञान की उपादान सामग्री से होती है। ज्ञान में अपनी उपादान से, अपनी योग्यता से, अपनी सामग्री से, अपने ज्ञान वैभव से ऐसी रचना की है।
वस्तु का ज्ञाना का नहीं होता है, ज्ञा का होता नहीं, क्योंकि ज्ञा का ऐसा क्यों है?
क्योंकि जगत को परिचय ही उसी बात का है, जिसका परिचय है उसके परिचय करवा के अंदर ले चलते हैं। ले चलना तो अंदर एक बच्चे के अंदर ले चले, जिस चीज का बलि तो ये जिसको ये समझता है थोड़ा सा का जानना ज्ञान के अंदर में होता है तो वही तो समझाता है ना। देखिए आचार्य भगवंत के ज्ञानियों की परम करुणा निष्कारण करुणा कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से उठा कर लेके आते हैं उसको तो इतना ही बताना है कि ज्ञायक को ज्ञायक है इसके आगे कुछ कहना ही नहीं है तो उसके अंदर में उसका सारा विश्व कमाया जाता है। लेकिन आप ज्ञायक ही है उसमें जीव क्या समझे तो उसके शुरुआत करते ज्ञान करते तो ज्ञान काल से ज्ञानाकार में ले आए ज्ञानाकार से ज्ञान में ले आते हैं ज्ञान से ज्ञायक में ले आते हैं तो वैसे तो ज्ञायक ही है। तो ये आचार्य भगवंतों के निष्कारण करुणा है ज्ञानी धर्मात्माओं के निष्कारण करुणा है कि उसने हमारे लिए हमारे ऊपर निष्कारण करुणा करके हम कहीं पे भी नहीं रहते जहाँ पे भी रहते हो वहां से उठाकर सवाल मंडल में ला कर रखिए लोकालोक की उसमें रंज की कारणता नहीं है। ज्ञान के अंदर में लोकालोक जो निमित्त है उसकी रंज की कारणता नहीं है। तो ज्ञान लोकालोक को जानता है यह कथन व्यवहार ही है व्यवहार ही है। वास्तव में ज्ञान जयोन्मुख न होकर स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञाकार को ही जानता है। जैसे हम किसी अटालिका की कल्पना करते हैं अटालिका अटालिका मैंने महल तो पाताल की बनी होती है किंतु हमारी कल्पना की अटालिका तो हमारी कल्पना से बनी हमने कल्पना के अंदर में कोई महल की कल्पना की तभी हमारी कल्पना में जो महल बना तो कल्पना का महल है पाताल का नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान में ज्ञाकार मतलब ज्ञान की ही प्रवृत्ति है अपने ज्ञान के अंदर में जो महल बना है ये आकारों का महल तो अपने ज्ञान से ही बना है और वे जैसे से अत्यंत भिन्न ही रहते हैं तथा जगत में यही है इसलिए ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। यह तर्क एक भ्रम मूलक है जो ज्ञान की अप्रतिहत शक्ति की अवहेलना करके ज्ञान के क्लेव घोषणा करता है ज्ञान को नपुंसक घोषणा करता है। इतना सुंदर स्वभाव इतनी स्वतंत्रता इतनी स्वाधीनता इतना ज्ञान स्वभाव की व्यवस्था स्वतंत्र स्वाधीन निरपेक्ष पदार्थ की अपेक्षा बिना अपनी योग्यता से स्वयं जैसे जी आकार पर परिणमित हो जाए उसमें उत्पादन उसकी अपनी ज्ञान की सामग्री से बनी है ज्ञान शरीर से बना है उसके अंदर में जीवों का कुछ नहीं है कोई आदान प्रदान नहीं है वहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसी अद्भुत बात बाबू जी ने यहाँ पे कही है अभी जो कुछ भी बाकी रहेगी अपने अगले तो देखेंगे।